Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radha. Jai Sita Radha Sagaloma, Jai Sita Radha Sagaloma. Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. आज के शुभ अवसर पर हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम उन्हें भजन गाना चाहते हैं। आप सब साथ दे सकोगे? एक आई है वन गाना, एक है बस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तोमा बिना के दयालु जगता संसार, पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार। पतिता प्रभु ना पैबे आरा, भो समो पतिता प्रभु ना पैबे आरा। महाप्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखे महाप्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखे কৃপাকারো ক্ষমা করে আমি বড় দুঃখে কৃপাকারো ক্ষমা করে আমি বড় দুঃখে ভয়াকরো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই ভয়াকরো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই চেতনিয়ানিতাই করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র চন্দ্রমাজে ধরতমদাস করো শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র সঙ্গমে ধরতমদাস কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভয়াকর মনে তোমা বীর কে দয়ালু জগতা সংসারে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
জয় Vishnupad Paramahansa Prayab Jagacharya Sotara Sada Sri Srimad His Divine Geshe-la Bhetra Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Prayab Jagacharya Divine Geshe-la Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada Maharaj Ki Sri Sri Gonitai Ki Sri Sri Radha Raj Bihari Lalita Vishaka Ki Sri Sri Sitanam Lakshman Hanuman Ki শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব তিথি খির শ্রী গৌড় পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল খির শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব তিথি খির অল গ্লোরিজ টু দি অ্যাসেম্বলড ডিভোটিজ। All glory to Samar Gauri. All glory to Samar Gauri. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. अच्छा हिंदी कौन पढ़ सके? सिद्धार्थ जी आप पढ़ोगे हिंदी में दो पेज? हाँ, कोई अच्छी हिंदी पढ़ता है? कौन पढ़ता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप पढ़ते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे आप जानते हो, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज वो शुभ दिन है क्योंकि परम भगवान प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो आज चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है। तो आज के भागवतम क्लास के लिए हमने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक चुना है, क्योंकि इस श्लोक में 5000 साल पूर्व यह भविष्यवाणी थी कि भगवान प्रकट होंगे। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी। तो ये वर्स बोर्ड में लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हो। ठीक, कृष्णा वर्णम विक्षक्षणम संगोपंगास्त्रम प्रसादम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती हि स्यु मेधसः। कृष्णवर्णं त्विक्ष कृष्णं संगोपंगस्त पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राये इजंती ही शिव मेधसः। कृष्णवर्णं त्विक्ष कृष्णं संगोपंगस्त पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राये यन्ति हि शिव मेधसः। कृष्णवर्णं त्विष कृष्णं संगोपंगस्त पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राये यन्ति हि शिव मेधसः। दोहराइए कौन? माता जी और कोई?
शब्दार्थ, ये जो श्लोक है इसका जो लंबा तात्पर्य है दो पेज का प्रभुपाद जी के द्वारा, जो ध्यान से सुनना। अब सबको ठीक सुनाई दे रहा है? ठीक है।
शब्दार्थ
अनुवाद तात्पर्य।
शब्दार्थ कृष्णावर्णम, कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना, तीसरा कांति से, अकृष्णम काला नहीं सुनहला, स अंग संगियों समेत, उप अंग सेवकगण, अस्त्र हथियार, पार्षद विश्वास पात्र साथी, यज्ञ ही यज्ञ द्वारा, संकीर्तन प्राय ही मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त, यजंती पूजा करते हुए, ही निश्चय ही सुमेधसः बुद्धिमान व्यक्ति। अनुवाद, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन अथवा संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। अनुवाद दुराइए, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन या संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल या कृष्ण नहीं है किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर श्लोक में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य है जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है किंतु वह तीन अन्य रंगों में लाल श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेतायुग में किया किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए जो गौरहरि के नाम से विख्यात है। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्णावर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्णावर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण है अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम भी ये सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। श्री राजीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र है, क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। अतएव ये समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते थे। उनके कर्म असाधारण थे और उनके संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया, तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्री राजीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखलावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम यह सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। इसीलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिक अधिक आकृष्ट हो, जिस तरह की गुनगुनाते भौंरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय 189 में आया है। श्री राजीव गोस्वामी ने इसका संदर्भ इस प्रकार दिया है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगंदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में भी सुनहले रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर है और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने ये भी उद्धृत किया है, संन्यास कृत्समः शांतो निष्ठा शांति परायण। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और समभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं।
ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलक्या चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं સહગના રઘુનાથન્વિતમ તમ સજૈવમ સદ્વૈતમ સવદ્ભૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પદાન સહગના લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતમ સ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે બનેશ્વરી ઋષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરે પ્રિય વંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ ભયવચ પતિતાનામ પવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાચરી ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 વર્ણન તીક્ષ કૃષ્ણ સંગોપંગાસ પરશદમ યજ્ઞે સંકિર્તન પ્રાય જયંતિ હી શિવ મેર સહ. તો આજ કી ક્લાસ ઓર 40 મિનિટ 50 મિનિટ ચલેગી, ઉસકે પશ્ચાત આજ 11 બજે હમારે પ્રિય ગુરુ ભાઈ સિદ્ધાર્થ પ્રભુ આજ સંન્યાસ ગ્રહણ કરને જા રહે હૈ, તો વો કાર્યક્રમ 11 બજે શરૂ હોગા ઓર મહાપ્રભુજી લીલા કે ઉપર વર્ણન ફિર સે હોગા શામ કે સમય. તો યે શ્લોક હમને ઇસલિયે પઢા આજ ક્યોંકિ એક તો યે શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમ કે દ્વારા પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઓર શ્રીમદ ભાગવતમ કા વર્ણન કિયા થા ભગવાન ને કબ 5000 સાલ પૂર્વ, ઓર એ શ્રીમદ ભાગવત મે જો જ્ઞાન હૈ ઉસકી તુલના કિસી ઓર શાસ્ત્ર સે નહીં કી જા સકતી. જૈસે કલયુગા કી જો ઘટનાએ બીત રહી હૈ, કલયુગા કે જો લક્ષણ આપ અનુભવ કર રહે હો, ઇન સબ કા ઇન સબ કી ભવિષ્યવાણી હૈ ભાગવતમ મે જો કે ભગવાન ને દિયા થા 5000 સાલ પૂર્વ. તો આજ કે શ્લોક મે ભગવાન હમે ક્યા સંદેશ દે રહે હૈ, ભગવાન હમે યે સંદેશ દે રહે હૈ કે કલયુગ મે જો બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હૈ ઈશ્વર કે ઉસ અવતાર કી પૂજા કરેંગે જિસમે વો સદા સમકીર્તન કરતે હૈ. તો આપ સબ સ્વીકાર કરતે હો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પરમ ભગવાન હૈ સબ? તો ઇસ ભાગવતમ કે શ્લોક કે અનુસાર આપ હો અસલી બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ. આપકે પાસ બેશક પીએચડી ડિગ્રી નહીં હૈ, પર આપ હો બુદ્ધિમાન. ક્યો? ક્યોંકિ આપ યે સ્વીકાર કરતે હો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન હૈ, જો નિરંતર કૃષ્ણ કે નામ કા ગાયન કરતે હૈ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ઓર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મે કોઈ અંતર નહીં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ક્યા કરતે હૈ? સદા ભગવાન કૃષ્ણ કા ગુણગાન કરતે હૈ. તો જૈસે ભગવદ્ ગીતા મે ભગવાન કહેતે હૈ યદા યદા ધર્મ સે જ્ઞાની ભવતિ ભારત અભ્યુતન મધર્મ સે તદાત્મનમ સૃજામ્ય હમ. મે પ્રકટ હોતા હું અલગ અલગ સમય કિસ લીએ? પારિતન્ય સાધુ નામ વિનિશ્ચિત દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગ યુગે, ધર્મ કે નિયમ કી સ્થાપના કે લીએ. ગાર્ગ મુનિ ભગવાન કો નામ દે રહે થે ઓર જબ ઉનકે માતા પિતા નંદ મહારાજ ઓર યશોદા માતા કે સાથ થે, ઉન્હોને કહા કે યે બાલક અલગ અલગ સમય મે અલગ અલગ રંગ મે અવતારિત હોતા હૈ, લાલ સફેદ પીલા. ઉનકી યે ભવિષ્યવાણી થી કે યહી ભગવાન કૃષ્ણ પ્રકટ હોંગે. કબ? કલયુગ મે ચૈતન્ય પીલે રૂપ મે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે રૂપ મે. તો પરસો હમ લોગ મેં કલ શામ કોઈ લોટા માયાપુર સે, પરસો હમ થે શાંતિપુર મેં શાંતિપુર ઐતિહાસિક શહેર હૈ જ્યાં કી અદ્વૈતાચાર્ય પ્રકટ હુએ થે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે પ્રકટ હોને સે પહેલે ઉનકે સનાતન સાથી પ્રકટ હો ચુકે થે કૌન માધવેન્દ્રપુરી કા તીર્થભાવતી થી આપને પરસો મનાઈ થી ફિર ઉનકે ગુરુ ઈશ્વરપુરી ફિર ઉનકે પિતા જગન્નાથ મિશ્રા ઉનકી માતા સચી માતા ઓર અદ્વૈતાચાર્ય તો અદ્વૈતાચાર્ય પ્રકટ હુએ થે મહાપ્રભુજી સે પહેલે ઇસલિયે જબ આપ પંચતત્વ કી તસવીર દેખતે હો તો આપને અનુભવ કિયા હોગા કે અદ્વૈતાચાર્ય કી જો તસવીર હૈ ઉસમેં દાઢી ભી હૈ દૂસરો કી તુલના મેં વો બૂઢે દિખતે હૈ ક્યોંકી અદ્વૈતાચાર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે લગભગ દાદાજી કી ઉમર કે થે તો અદ્વૈતાચાર્ય પહેલે પ્રકટ હો ગયે થે ઉન્હોને દેખા સમાજ કી સ્થિતિ ઉન્હોને દેખા કે લોગ ઇતને ગહરાઈ કે સાથ જુડે હૈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કે કાર્ય મેં તો ઉનકી એ પ્રાર્થના થી પરમ ભગવાન સે કે આપ સ્વયં પ્રકટ હો કિસ લિયે પતિતો કા ઉદ્ધાર કરને કે લિયે ઉચ્ચ અદ્વૈતાચાર્ય ઓર હરિદાસ ઠાકુર શાલિગ્રામ શિલા કી પૂજા કર રહે થે પરસો હમને દો શાલિગ્રામ શિલા કા દર્શન લિયા થા જિનકી પૂજા અદ્વૈતાચાર્ય કર રહે થે ઓર ઉનકી પ્રાર્થના ક્યા થી હે ભગવાન આપ સ્વયં પ્રકટ હો પતિતો કા ઉદ્ધાર કરને કે લિયે ઓર અદ્વૈતાચાર્ય ઓર હરિદાસ ઠાકુર દિન રાત હરિનામ કા જાપ કર રહે થે ઓર ભાગવતમ કા અધ્યયન ઓર ઉનકા એક હી ભાવ થા કે ભગવાન પ્રકટ હો તો જબ ભગવાન પ્રકટ હોતે હૈ અપને હી ભક્તો કો માતા પિતા ઓર સાથિયો કે રૂપ મેં સ્વીકાર કરતે હૈ ઓર જગન્નાથ મિશ્રા ઓર સચી માતા બને ભગવાન કે પિતા ઓર માતા ઈશ્વરપુરી બને ઉનકે ગુરુ ઓર માધવેન્દ્રપુરી બને ઉનકે પરમ ગુરુ તો મહાપ્રભુ ને બચપન મેં હી અનેક દિવ્ય લક્ષણ પ્રકટ કિયે ઉનકે નાનાજી કા નામ થા નિલંબરા ચક્રવર્તી ઉનકે નાનાજી બહુત ઊંચે કોટી કે જોશી થે આજ કે જોશીઓ કે સમાન નહીં જો કી કમ્પ્યુટર કા બટન દબા કર આપકા ભવિષ્ય મેં બોલ રહે અસલી જોશી થે ઓર નિલંબરા ચક્રવર્તી ને ઉસ બાલક કી જન્મપત્રી બનાઈ ઓર જબ જન્મપત્રી બનાઈ તો ઉન્હોને દેખા કે યહી બાલક પ્રકટ હો ચુકા હૈ અલગ અલગ યુગો મેં યહી બાલક પૂરે વિશ્વ કો સંભાળ રહા હૈ ઇસલિયે એક નામ ઉન્હોને યે દિયા વિશ્વંબર ઓર મહાપુરુષ મેં મહાપુરુષ કે શરીર મેં 32 લક્ષણ હોતે હૈ લંબે હાથ બરા ગોરા શરીર ઓર યે સારે 32 કે 32 લક્ષણ નિલંબરા ચક્રવર્તી ને કહા પ્રસ્તુત હૈ વિશ્વંબર કે શરીર મેં તો મહાપ્રભુજી પ્રકટ હુએ થે કિસ લિયે ઇસ હરિ નામ કા પ્રચાર કરને કે લિયે આદિ લીલા મેં આપ પઢતે હો અનેક શ્લોક હૈ જ્યાં કી महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने कलयुग में अपने उदाहरण के द्वारा लोगों को शिक्षा देना है, अपने उदाहरण के द्वारा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कई बार एक क्लास या पाठशाला में अध्यापक विद्यार्थी के हाथ पकड़कर उसको लिखना सिखाता है, तो उसका ये अर्थ नहीं वो अध्यापक विद्यार्थी बन गया, वो अध्यापक ही रहता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए भक्त के रूप में हमें भक्ति की शिक्षा देने के लिए। अभी आप कहोगे महाराज आज के वातावरण में इतने व्यक्ति दावा करते हैं वो भगवान के अवतार हैं, अभी हम किन किन को माने भगवान हैं? तो क्या भगवान जब प्रकट होते हैं दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जन्म कर्म चामे देव्यम एवं मेरी तत्पतः। भगवान कहते हैं मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही क्या है, दिव्यम। दिव्यम का अर्थ है जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति देवता देवी नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का की चर्चा करो तो आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की तुलना कोई कर सकता है? कोई गोवर्धन पर्वत उठा पाया है? कोई पूरे विश्व का दर्शन दे पाया है अपने मुंह में? नहीं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अनेक अवसरों में अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की थी। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे नवदेव की सारी माताएं हरे नाम के उच्चारण में जुड़ी हुई थी, और महाप्रभु बचपन में भी रोना बंद करते थे, कब? जब वो हरि नाम सुनते थे। वैसे तो महाप्रभु जी की बाल लीलाएं भी इतनी अधिक हैं कि आप बाल लीलाओं पर भी एक हफ्ता काट सकते हो। हम केवल संक्षेप में दो तीन का वर्णन करेंगे क्योंकि हम महाप्रभु जी के सिद्धांत का वर्णन करना चाहते हैं। तो जब महाप्रभु पैदा ही हुए थे, जैसे हमने कहा, सारे जो दिव्य लक्षण जो भगवान के पैरों में होते हैं वो सारे प्रकट हुए थे उनके पैरों में भी। एक समय क्योंकि महाप्रभु का देह सजा हुआ था गहनों के साथ, तो दो चोर आए। दो चोरों ने जगन्नाथ मिश्रा के आंगन से इस बालक को चुरा लिया, और उनका विचार था इस बालक को अपने कंधे में बिठाकर भागने लगे। उनका विचार था थोड़ी दूरी पर जाकर बच्चे के गहने को चुरा लेंगे और बच्चे को मार देंगे। पर भगवान थे अंतर्यामी, तो भगवान चोर भागते गए, पर जहां वो चोर सोच रहे थे कि हम उनके घर से दूर भाग रहे हैं, तो जहां भी वो मुड़ते थे वो लौट जाते थे महाप्रभु के घर में। फिर कोई 20 बार उन्होंने प्रयास किया, वो भागने लगे दूर, पर भगवान के भ्रम का प्रभाव ऐसा था कि वो लौट जाते थे जगन्नाथ मिश्रा के घर। फिर चोरों ने ये छोड़ दी योजना, उन्होंने कहा हम पकड़े जाएंगे। एक समय एक ब्राह्मण यात्री आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में रहने के लिए। जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमें कहते थे कि उनके पिता गौर मोहन डे भी अक्सर संतों को अपने घर में निमंत्रण देते थे। तो ये ब्राह्मण यात्री आया, और ये ब्राह्मण हैं ना तो किसी को दोष देते हैं और अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं। तो इस ब्राह्मण यात्री ने अपना भोजन तैयार किया, खाने से पहले भगवान को भोग लगा रहे थे, शैतान ने मायने आकर उस भोजन को झूठा कर दिया, शक लिया। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा कि मैं भूखा रहूं आज, तो भूखा सो जाऊंगा। पर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हो, आप भूखा नहीं सो सकते। तो उनके कहने पर फिर से इस ब्राह्मण ने भोजन बनाया, फिर से भोजन बनाया। जब भगवान को भोग लगा रहा था, शैतान निमाई फिर पहुंच गया और निमाई ने उसे झूठा कर लिया। झूठा कर लिया तो भोग लग नहीं सकता। ब्राह्मण तो संतुष्ट था, पर जगन्नाथ मिश्रा अशांत थे। उन्होंने कहा ये मेरा मेहमान है और मेरा बेटा मेरी बेइज्जती करवा रहा है। उन्होंने कहा मैं इस लड़के को उस कमरे में बंद कर देता हूं, आप कृपा करके फिर से भोजन बनाओ। ब्राह्मण ने कहा आधी रात हो गई है, भूखा सोने दो। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मेहमान हो, आप ब्राह्मण हो, आप भूखा नहीं सो सकते। जगन्नाथ मिश्रा वगैरह तो सो गए और ब्राह्मण ने फिर से भोजन बनाया। तीसरी बार भोजन बनाया, जब भोग लगा रहे थे तिलमाई फिर वहां पहुंच गई शाम। और जब तीसरी बार ब्राह्मण ने निमाई का दर्शन लिया तो कहा फिर से पहुंच गए, तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें बंद कर दिया है कमरे में। फिर निमाई ने कहा तुम घबराते क्यों हो, ये भोजन भोग तो मुझे तो खिला रहे हो। फिर उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रस्तुत किया बंसरी के साथ। और जब निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रस्तुत किया तो ब्राह्मण बेहोश हो गया। पहले जब निमाई ने कहा यह भोग आप मुझे तो लगा रहे हो, तो उस ब्राह्मण ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, देखो ये अपने आप को भगवान बुलाता है। तो जैसे ही वो कहा तो उन्होंने श्याम सुंदर का रूप प्रस्तुत किया। फिर वो ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ ये दर्शन लेकर, निमाई ने उन्हें आदेश दिया भविष्य में किसी को नहीं कहना कि तुमने यह रूप देखा है, क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा भगवान के जो साथी होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि स्वयं भगवान है। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर नंद महाराज और यशोदा माता को पता रहता कि उनके बेटा स्वयं भगवान है तो उनको कोई चिंता ही नहीं रहती, पर वो सदा चिंता में थे भगवान की सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उनको उनको भविष्य भय था कि कोई असुरों द्वारा कुछ नुकसान नहीं आ जाए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा अपने माता पिता को भी ये सूचना प्राप्त होने नहीं देते कि वह स्वयं भगवान है। यशोदा माता नंद महाराज क्या सोचते थे, शायद हमारा बेटा देवता है, परम भगवान नहीं देवता, शायद हमारे बेटे पर नारायण की खास कृपा है, नहीं तो कैसे बच जाता है हर समय जब असुर वध करने आते हैं। तो इस ब्राह्मण के सामने एक बड़ी समस्या थी, एक तरह से उसे पता था ये निमाई भगवान है, पर भगवान ने आदेश दे दिया तुम किसको एक सूचना दे नहीं सकते। तो उस प्रकार भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं। जब वो छोटे से ही थे एक समय कई खूबसूरत पिल्ले थे, पिल्ले पपी डॉग, तो निमाई ने सबसे खूबसूरत पिल्ला चुरा लिया। तो उनके दोस्त कहने लगे निमाई निमाई तुमने बेईमानी की है, तुमने सबसे खूबसूरत पिल्ला ले लिया और हमारे लिए बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए। और निमाई जब वो पिल्ला लेकर घर में गया तो उसके माँ बाप कहने लगे अरे हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में कुत्ता थोड़ी आ सकता है। तो रिमाई ने कहा अगर मेरा पिल्ला यहां नहीं रह सकता पपी डॉग तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। तो आप लोग कहोगे अगर निमाई पिल्ला रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। तभी आप देखोगे क्यों आप नहीं रख सकते। तो निमाई ने पिल्ले को घर में रख लिया और रोज सच्ची माता कहती थी, मन में सोचती थी ये पिल्ला कब घर से निकलेगा। एक दिन जब निमाई गए थे गंगा में स्नान करने के लिए तो सच्ची माता ने वो रस्सी खोल दी, वो पिल्ला घर छोड़कर नवदेव के शहर के बीच में पहुंच गया। जब निमाई गंगा से लौटा स्नान करके तो उनके दोस्तों ने कहा निमाई निमाई तुम्हारी मां ने तुम्हारे पिल्ले को घर से निकाल दिया। तो निमाई ने 8-9 मित्रों को भेजा उस पिल्ले को ढूंढने के लिए और फिर सबने देखा कि पिल्ला नंबद्वीप में दो पैरों पर नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठाकर हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा था और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, उसके बाल जो है खड़े हो रहे थे, शरीर कांप रहा था। ये सब क्या है? शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और पूरा नवद्वीप मिनटों में वहां पहुंच गया इस चमत्कार को देखने के लिए और सब कहने लगे लगता है निमाई स्वयं नारायण है, एक पिल्ले को उसने शुद्ध भक्त बना दिया। और फिर सबके सामने एक रथ आया स्वर्ग से जिसमें वो पिल्ला चढ़ा और सबको बाय बाय करते करते भगवान के धाम लौटा। तो अगर जैसे कई बार लोग कहते हैं शिव जी ने पूरे कंठ नदी को जहर की नदी को अपने कंठ में रखा था इसलिए शिव जी का नाम क्या है नीलकंठ। तो कई बार लोग शिव जी की नकल करते हैं, भंग पीते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपने शिव जी की नकल करनी है तो पहले एक जहर की नदी को अपने कंठ में रोको फिर उनकी नकल करो। तो उसी प्रकार अगर आपने सोचना है कि अगर निमाई पिल्ला रख सकता था हम के लिए रख सकते तो आप पहले ये यकीन दिलाओ कि आप उस पिल्ले को शुद्ध भक्त बनाओगे और अगर शुद्ध भक्त नहीं बनाने की योग्यता फिर मत रखो। तो इस प्रकार निमाई के कई बाल लीलाएं हैं। जैसे मैंने कहा इनकी बाल लीलाओं का वर्णन करने में ही काफी देर लग जाएगा और आदि लीला में निमाई ने कई श्लोकों में कहा है कि मैं प्रकट हुआ हूं किस लिए, अपने उदाहरण से लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए। और निमाई प्रकट हुए थे अपने साथियों के साथ, अद्वैताचार्य जिनका हम वर्णन कर चुके हैं ये वो हैं विष्णु तत्व, भगवान नित्यानंद वो हैं विष्णु तत्व, बालराम जी या लक्ष्मण जी के अवतार। और तो चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और ये निमाई पंडित, अद्वैताचार्य और नित्यानंद ये हैं विष्णु तत्व, स्वयं भगवान अलग अलग रूपों में। फिर इनके साथ प्रकट हुए थे गदाधर जो इन शक्ति तत्व, राधा रानी जी के अवतार। और फिर इनके साथ प्रकट हुए थे और कौन, शिवास जिन्हें नारद मुनि का अवतार माना जाता है वो जो है जीव तत्व। तो ये पंच तत्व प्रकट हुए थे भक्ति के भंडारे को खोलने के लिए। जैसे खजाना होता है कि खजाना किधर पड़ा हुआ है तो कोई व्यक्ति आकर वो खजाने को तोड़ता है ताला और खजाने को बांटता है तो भौतिक स्थिति में तो खजाना खाली हो जाएगा, है ना। चाहे आपका कितना भी गहरा खजाना हो अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो खाली हो जाएगा। पर चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि पंचतत्व प्रकट हुए, उन्होंने वो भक्ति के खजाने का ताला तोड़ दिया और वो खजाने को बांटते गए, जितना बांटते गए वो खजाना और भरते गया। मतलब कि आप भगवान की भक्ति के मार्ग में जितनी भी सेवा करो उतनी ही आप ज्यादा कर सकते हो। छोटी आयु में ही निमाई संस्कृत के विद्वान बन गए। निमाई के कई नाम थे, एक नाम था घोर सुंदर, कि उनका जो चेहरा था गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन था। एक था गौर हरि, एक था आपका नाम था निमाई। निमाई नाम क्यों दिया था? उनका जन्म हुआ था नीम पेड़ के नीचे, और निमाई के प्रकट होने से पहले उनके खानदान में कई बच्चे प्रकट हुए थे जिनका पैदाइशी में ही देहांत हो गया था। तो श्रीवास पंडित की पत्नी ने ये नाम दिया। बंगाल में यह भावना रहती है कि नीम के पत्ते, नीम का कुछ पत्ता हो या कोई तो नजर नहीं लगेगी। तो एक था नाम था निमाई पंडित। तो छोटी सी आयु में ही निमाई संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, इसलिए उनका एक और नाम था निमाई पंडित। आजकल तो लोग पंडित बुलाते हैं और उनका आचरण होता है शूद्रों का, पर पंडित का मतलब है जिसको शास्त्र ज्ञान हो और जिसका जीवन भी हो शास्त्र पर आधारित। आज से 500 साल पूर्व नवदीप शहर जो था विश्व का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल शहर था, जहां की उस समय के सारे पंडित रहते थे। फिर बाद में जब मुसलमान हुसैन शाह का राज्य आरंभ हुआ तो जो पंडित थे छोड़कर चले गए जगन्नाथपुरी में, जहां महाराज प्रतापपुत्र का राज्य था उड़ीसा में। तो निमाई जो था सबसे प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान बन गया था 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में वो संस्कृत सिखा रहे थे दूसरों को। 9 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत का पाठशाला भी खोल दिया था। और उस समय एक बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी कश्मीरी पंडित थे, पर संस्कृत के भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। और केशव कश्मीरी ने भारत में सबको हरा दिया था संस्कृत भाषा की डिबेट में। तो केशव कश्मीरी को पता लगा कि नवद्वीप में एक छोटा बालक है जो कि बहुत गहरा संस्कृत का ज्ञान रखता है। तो उन्होंने नवद्वीप में सूचना भेजी कि मैं आना चाहता हूं आपके शहर के प्रतिनिधियों के साथ डिबेट करने के लिए, मुझे बताओ कौन तुम्हारे शहर का मेरे सामने बैठेगा। तो जब नवद्वीप के पंडितों को यह सूचना आई तो उन्होंने एक सभा बुलाई, मीटिंग। उन्होंने कहा कि केशव कश्मीरी आना चाहता है हमारे सामने डिबेट करने के लिए, हमारे में से कौन उसके सामने बैठेगा। सब घबरा गए। केशव कश्मीरी का नाम सुनते ही लोगों को पसीना निकल आता था। सबने कहा हम तो उसके सामने नहीं बैठेंगे, हम उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक ने कहा हम निमाई को आगे क्यों नहीं रख रहे, निमाई तो छोटा बच्चा है 9 साल का, अगर केशव कश्मीरी ने उसे हरा दिया तो हम कहेंगे आखिर हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर किसी प्रकार से दिमाई ने उन्हें हरा दिया तो हम कहेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा उसे हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो उन्होंने सूचना भेज दी केशव केशवीरी को कि तुम्हारी चर्चा होगी निमाई पंडित के साथ। तो केशव केशवीरी बड़े घमंडी पंडित थे, ज्ञान था, सरस्वती देवी के भक्त थे, सरस्वती की कृपा थी, पर उनका भाव था सबसे मशहूर बनना। हम भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं इस भावने से नहीं कि हमें आदर मिले, हम सबसे प्रसिद्ध भक्त बने। हम भक्ति के भावना में जुड़ना चाहें कि सेवा भावना से। तो केशव कश्मीरी अपने शिष्यों के साथ या चमचों के साथ आ रहे थे, बैंड बाजा उनके पीछे था, केशव कश्मीरी की जय हो। तो केशव कश्मीरी पहुंचे जहां की निमाई एक क्लास दे रहे थे अपने विद्यार्थियों को गंगा के तट पर पेड़ के नीचे। केशव कश्मीरी ने पूछा, आप ही हो वो प्रसिद्ध निमाई पंडित? निमाई ने कहा, हाँ मुझे निमाई के नाम से जानते हैं। केशव कश्मीरी ने कहा, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। निमाई ने कहा, मैं तो मूर्ख हूं, एक पंक्ति को भी ठीक रूप से लिख नहीं सकता, मेरी प्रशंसा क्या। तो केशव कश्मीरी ने कहा, आप सुनाइए कुछ श्लोकों की रचना करके। निमाई ने कहा, आप पहले कीजिए, आप तो हो असली विद्वान। तो केशव कश्मीरी ने एक घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना की गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए, एक घंटे में। और फिर उन्होंने पूछा, तो आपको कैसे लगा? इमाई ने कहा, बहुत अच्छा, पर इन श्लोकों में ये कमी थी। और इमाई ने सारे 100 श्लोक सुना दिए। जब केशव केशवीरी ने देखा कि सारे 100 श्लोक निमाई ने एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया है तो आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तो वायु की तेजी से इन श्लोकों का उच्चारण किया था, तुमने एक बार सुनने से कंठस्थ कैसे कर लिया? वो आश्चर्य हो गए। एक बार सुनने से अगर कोई कंठस्थ कर ले तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? श्रुति धरा। जैसे सूत गोस्वामी, उन्होंने भागवतम के 18,000 श्लोकों को एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया। तो निमाई ने केशव कश्मीरी की रचनाओं की गुणों को सुनाया और फिर कमियों को सुनाया। जब उन्होंने कमियों को सुनाया, केशव कश्मीरी उत्तर नहीं दे पाए। और निमाई के जो विद्यार्थी थे वो जरा हंसी उड़ाने लगे केशव कश्मीरी की, देखो हमारे टीचर के प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाता। पर निमाई ने उन्हें रोक दिया, निमाई ने रोक दिया, अपने विद्यार्थियों को डांटा, कहा, ये हमारे मेहमान हैं, ये थके हुए आए हैं, कल उत्तर देंगे। तो निमाई ने उनकी सुरक्षा की। तो शाम के समय आखिर निमाई ने हमें तिनाद भी सुनी चेना की शिक्षा दी है ना, कि हमें दूसरों को आदर देना चाहिए बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। तो केशव कश्मीरी सरस्वती देवी के भक्त थे। और केशव कश्मीरी शाम को अपने कमरे में लौटे, सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप हमेशा मेरी वाणी के द्वारा आपने मेरी सुरक्षा की है, आज आपने सुरक्षा नहीं की, जब निमाई ने उन दोषों को सुनाया तो आपने मुझे बुद्धि नहीं दी उत्तर कैसे देने के लिए। तो सरस्वती देवी ने कहा, वो लड़का निमाई, इधर जा चुप कर। वो लड़का ने माई, साधारण बच्चा नहीं, स्वयं कृष्णा है और मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आए, इमाई के चरण कमलों में प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार निमाई पूरे भारत में छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान बन गए थे। एक भक्त था जिनका नाम था खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर जो थे, यहां बच कुछ चुप करोगे आवाज आ रही है बोल। खोला बेचा श्रीधर जो थे खोल का धंधा करते थे। खोल का धंधा क्या मतलब? केले के पत्तों के प्याले बनाते थे और जो लोग गंगा नदी में जाते थे पूजा के लिए उनको बेचते थे, और जो छोटी सी आमदन होती थी उस आमदन का 50% खर्चते थे। किस लिए? गंगा नदी की सेवा के लिए। और खोला बेचा श्रीधर के पास रहने के लिए एक ही कमरा था, वो कमरा भी पीतल का बना हुआ था, उस कमरे में कोई छत भी नहीं थी। और जब बारिश आती थी तो खोला बेचा श्रीधर दीवार के साथ खड़े हो जाते थे कि भीगे नहीं। और उनके पास एक ही धोती थी और पूरे घर में एक ही प्याला। वो प्याला इतना टूटा हुआ था, इतना पुराना था कि चैतन्य भागवत में कहा गया है कि कोई चोर भी उसे नहीं चुराएगा। वो प्याला इतना पुराना था कि कोई चोर भी नहीं लेगा। तो अगर प्याला इतना पुराना है तो खोले बेचा श्रीधर दिन रात ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे। उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे ये पागल आदमी, लगता है इसको भूत सता रहा है, खुद भी नहीं सोता और हमें भी सोने नहीं देता, क्योंकि सारी रात वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और खोले में जो श्रीधर केले बेचते थे तो निमाई पंडित रोज उनकी दुकान में आता था। निमाई मौका ढूंढता था खोला बेचा के श्रीधर की दुकान में आने के लिए। और निमाई पंडित आकर क्या कहता था, क्या भाव है केले का आज? तो केले का भाव बोलते थे एक पैसा दर्जन। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत नफा कमा रहे हो, इसका आधा पैसा दर्जन भाव होना चाहिए। तो खोले बेचा श्रीधर कहता था तुम दूसरी दुकान से जाके खरीद लो, मेरे पास क्यों आते हो रोज? तो फिर निमाई कहते थे नहीं नहीं, मैं दूसरी दुकान में क्यों जाऊं, तुम अच्छे सप्लायर हो, मैं तुम्हारी दुकान में आऊंगा। फिर निमाई कहता था तुम्हें मुझे पता है तुम बहुत धनी हो। तो खोले बेचा श्रीधर कहता था अगर आप सोचते हो मैं इतना धनी हूं तो आओ मेरे कमरे में देख लो कितना धन है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा धन छुपा हुआ धन है, मैं एक दिन पूरे विश्व को बताऊंगा तुम कितने धनी हो। तो खोले बेचा और फिर निमाई उनको छेड़ता था, कहते थे देखो तुम्हारे जो पड़ोसी हैं ये दुर्गा देवी के भक्त हैं, और देखो उनके पास कितना अच्छा मकान है रहने के लिए, कितने अच्छे कपड़े हैं, और तुम कृष्णा के भक्त हो और तुम्हें एक फटी हुई धोती, एक टूटा हुआ कमरा है रहने के लिए, तुम क्यों नहीं बन जाते देवी के भक्त? खोला बेचा श्रीधर कहता नहीं, मैंने केवल कृष्णा की भक्ति करनी है। तो खोला बेचा श्रीधर दिन रात हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे। वो जो छोटी सी आमदन होती थी उसका 50% वो खर्चते थे, किस लिए? गंगा की नदी। तो एक दिन निमाई ने उन्हें कहा अरे भाई ये 50% सोच रहे हो गंगा की सेवा के लिए, वो मेरी सेवा में तो है आके गंगा कहां से आती है, मेरे चरणों से आती है। तो खुद बच्चे सीधा के लगा विष्णु विष्णु विष्णु, देखो ये अपने आप को भगवान समझता है। तेज प्रकार खोले बच्चे श्रीधर और निमाई का इतना गहरा संबंध था। एक समय श्रीवास पंडित के घर में निमाई पंडित ने अपना विराट रूप प्रकट किया, वो विराट रूप जो कि भगवान कृष्ण ने प्रकट किया था अर्जुन की प्रशंसा के लिए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में। और भगवान ने अपने साथियों को कहा कि तुम पांच भक्तों को लेकर आओ यहां, जिनमें से एक थे खोलोबच्चा श्रीधर। तो भगवान ने खोलोबच्चा श्रीधर को कहा भांगो मेरे से तुम्हें क्या ऐश्वर्य चाहिए, तुम्हें मैं पूरे विश्व का राजा बना सकता हूं, जो ऐश्वर्य चाहिए मुझे दीजिए, मांगो मेरे से मैं पूरा कर दूंगा। खुला बच्चे श्रीधर ने कहा अगर आप मुझे ऐश्वर्य देना चाहते हो तो मुझे ये वर दीजिए कि हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओगे सौदा करने और हर जन्म में आप मेरे साथ रहोगे, मुझे और कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। क्योंकि महाप्रभु ने कहा था ना कि तुम बहुत धनी हो, एक समय मैं पूरे विश्व को दिखाऊंगा तुम्हारा धन। तो उनका धन क्या था, ये भाव कि हाँ मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए भक्त की भावना। खुला बच्चे श्रीधर ये पम्पकिन को हिंदी में क्या कहते हैं, पम्पकिन भी उगाते थे अपनी खेती में और महाप्रभु पम्पकिन खाते थे उनके हाथ का बनाया हुआ। तो खोले बच्चे श्रीधर बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे, भौतिक दृष्टि से बिल्कुल गरीब थे, रहने के लिए एक ही कपड़ा, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक धनी थे। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, हरिनाम। तो असली धन क्या है, असली धन है ये महामंत्र। जिसके पास ये महामंत्र है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो है धनी। जिनके पास केवल बड़ी बैंक बैलेंस है स्विट्जरलैंड में या बड़ी बड़ी मोटर बड़ा मकान, ये जो धन है एक भारी भारी भोजा है। तो निमाई ने शुरू में तो अपनी बाल लीला प्रकट की और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है निमाई प्रकट हुए किस भाव में, राधा रानी जी के भाव में। जो गोपियों का स्नेह था भगवान के लिए, ये सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति है। और सब गोपियों में भगवान के हजारों गोपियां हैं, जिनमें कि सबसे प्रसिद्ध मानी जाती हैं 16108। और ये 16108 में 108 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। 108 गोपियों में 8 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये 8 गोपियों में 4 गोपी ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन कौन, राधा रानी, चंद्रवाली, ललिता और विशाखा। और इन 4 गोपियों में 2 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं और 2 में है सबसे प्रसिद्ध राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस पृथ्वी पर राधा रानी के भाव को लेकर। राधा रानी का भाव क्या था, केवल सेवा का भाव। उनके मन में कभी कोई और भाव प्रकट नहीं होता सेवा के भाव के बिना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे आनिया, यही राधा और कृष्ण प्रकट हुए किस भाव में, चैतन्य महाप्रभु जी के भाव में। તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને આપને ઉદાહરણ સે હમે શિક્ષા દી હૈ કે કિસ ભાવ સે હમે સેવા કા ભાવ કરના ચાહે ઓર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કી અનેક લીલાએ હૈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે વિષય મેં તીન પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ હૈ જિનકે માધ્યમ સે આપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર સકતે હો એક હૈ ચૈતન્ય ચરિતામૃત જિસકી રચના કૃષ્ણદાસ કાવ્યરાજજીને કી નિત્યાનંદજી કી પ્રેરણા પર એક ઓર હૈ ચૈતન્ય ભાગવત જિનકી રચના વૃંદાવનદાસ ઠાકુરને કી જિને હમ વ્યાસદેવજી કા અવતાર માનતે હૈ ઓર એક હૈ ચૈતન્ય મંગલ જિસકી રચના લોચનદાસ ઠાકુરને કી ઓર એક પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ હૈ ચૈતન્ય કુછ જિસકી રચના મુરારી ગુપ્તાને કી હૈ મુરારી ગુપ્તા અને મુરારી ગુપ્તા ડોક્ટર થે આયુર્વેદિક જો કે મહાપ્રભુજી કી લીલાઓ કા સબ લેખો લિખ રહે થે ઓર ઉન્હોને ભી યે પ્રકટ કિયા હૈ તો યે ચાર પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાંત હૈ પ્રભુપાદજીને ચૈતન્ય ચરિતામૃત કા અનુવાદ કિયા ભક્તિ સિદ્ધાંતજીને ચૈતન્ય ભાગવત કા અનુવાદ કિયા ઓર ઇન ગ્રંથો દ્વારા હમ મહાપ્રભુજી કી લીલાઓ કા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર સકતે હૈ તો મેં એક ઓર લીલા કા વર્ણન કરૂંગા ફિર હમ આગે શામ કો બોલેંગે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી રે બચપન મેં તો અપની બાલીલા પ્રકટ કી ફિર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ને અપના સંસ્કૃત કે જ્ઞાન કા પ્રદર્શન દિયા પર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને મહા અપના સંકીર્તન આંદોલન શરૂ નહીં કિયા ફિર મહાપ્રભુ ને અપના સંકીર્તન આંદોલન આરંભ કિયા કહાં શ્રીવાસ પંડિત કે ઘર મેં હમારે માયાપુર ચંદ્રદાય મંદિર કે નિકટ મેં હૈ શ્રી શ્રીવાસ આંગન શ્રીવાસ શ્રીવાસ ઠાકુર પંડિત કે પાંચ ભાઈ થે ઓર ઉનકી અચ્છી કોઠી કા ઉપયોગ કિયા મહાપ્રભુજી ને અપના સંકીર્તન આંદોલન આરંભ કરને કે લિયે ઓર શ્રીવાસ આંગન કી કઈ 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 લીલાએ હૈ શ્રીવાસ આંગન કી લીલાઓ પર ભી આપ એક હફતા લગા સકતે હો તો મહાપ્રભુજી ને જબ અપના સંકીર્તન આંદોલન આરંભ કિયા તો જો હિન્દુ લોક થે વહાં કે સ્મારતા બ્રાહ્મણ વો ઘબરા ગયે ઉન્હોને કહા ઇને માયને ક્યા યે કીર્તન કા આંદોલન શરૂ કિયા હૈ હમારે હિન્દુ ધર્મ કી બેઇઝ્જતી હો રહી હૈ તો વો ગયે ચાંદ કાઝી ઉસ સમય રાજા કા પ્રતિનિધિ થા ઓર ઇન્ચાર્જ થા નદિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ કા ચાંદ કાઝી કો હિન્દુ બ્રાહ્મણ કહેને લગે યે નિમાય પંડિત હમારે ધર્મ કી બેઇઝ્જતી કર રહા હૈ ઉસને હરિ નામ સંકીર્તન શરૂ કિયા હૈ પાગલો જૈસે લોગ નાચતે હૈ ગાતે હૈ ઓર ફિર મુસલમાનો ને ભી આરોપ લગાયા મુસલમાનો ને કહા અગર હમ યે નિમાય પંડિત કે સંકીર્તન આંદોલન કો નહીં રોકેંગે તો સારે મુસલમાન હિન્દુ બન જાયેંગે ક્યોંકિ જબ નિમાય ને અપના સંકીર્તન આંદોલન આરંભ કિયા તો બહુ તેજ પ્રભાવ હો રહા થા કોઈ રુક નહીં પા રહા થા એક મુસલમાન થા જો બાર બાર રાજા કો કહે રહા થા રોકો રોકો નિમાય પંડિત કે સંકીર્તન આંદોલન કો રોકો તો રાજા ને કહા તુમ રોજ આકર મુજે દિન રાત શિકાયત કરતે હો રોકો 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 પર જબી મેં તુમે દેખ રહા હું તુમ હરે કૃષ્ણ બોલ રહે હો તો યે બડી અજીબ બાત હૈ એક તરફ સે તો કહેતે રોકો 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 જબ તો મુસલમાન ને કહા યે બાત સચ હૈ જબ સે મેને નિમાય કી વાણી કે દ્વારા યે હરે નામ સુના હૈ યે હરે નામ મેરે મુંહ સે નિકલતા હી નહીં મેં કિતની કોશિશ કરતા હું યે નિકલે પર નિકલતા હી નહીં તો નિમાય જો ચાંદ કાઝી કો સૂચના મિલી કે નિમાય પંડિત કે લોગ જે હરે નામ કર રહે હૈ શ્રીવાસ પંડિત કે ઘર મેં દિન રાત જો તો ઉન્હોને અપને પ્રતિનિધિઓ કો ભેજ કર उन्होंने पहले तो अपने सारे पुलिस वालों को भेजा पूरे शहर में कहां भी संकीर्तन होना होगा तो अब रोक दो और ચાંદકા જી ને સૂચના ભેજી યે સંકીર્તન આંદોલન કા બંધ કરો નહીં તો હમ સારે હિન્દુઓ કો મુસલમાન બના દેંગે. ઉન દિન હમે હિન્દુ કો મુસલમાન બનના બડા આસાન થા. અગર આપને મુસલમાન કે યહાં નોકરી લે લી ખતમ મુસલમાન બન ગયે. અગર મુસલમાન કે ઘર મેં ખા લિયા તો ભી બહાર. અગર એક મુસલમાન કી થાલી બાલ્ટી સે એક પાણી કા એક બૂંદ ભી ગિર ગયા આપ પર તો બસ હિન્દુ સમાજ બહાર કર દેતા થા. તો કેશવ કે યે તો કે યે ચંદ કાઝી ને અપને આદમીઓ કો ભેજ કર મૃદંગા તોડવા દીએ જિસે વો કીર્તન કર રહે થે ઓર કહા અગર ભવિષ્ય મેં યે સંકીર્તન આંદોલન ફિર સે શરૂ હુઆ તો સબકો મુસલમાન બના દિયા જાયેગા ઓર સબકી સંપત્તિ કો કબજા કર દિયા જાયેગા. તો સારે ભક્ત ઘબરા ગયે. આ યે તો બડી ભયંકર સ્થિતિ હૈ. લગતા હૈ ઉન દિનો મેં કોઈ જસ્ટિસ સિસ્ટમ નહીં થા. અબ કોર્ટ મેં જાને કી કોઈ સુવિધા નહીં થી. તો સારે ભક્ત ઘબરા ગયે ઓર કહેને લગે કી અભી તો હરિરામ સંકીર્તન બંધ કરના પડેગા. જબ યે સૂચના નિમાય પંડિત કો પહોંચી તો નિમાય પંડિત ને કહા કોણ યે હરિ નામ કો રોકતા હૈ. મેં દેખતા હું કોણ રોકતા હૈ. ચાંદ કાજી કો ચીડ દેગે. હમ હરિ નામ નહીં બંધ કરેંગે. તો લોકો મેં ફિર નિમાઈ ને પહેલી બાર નવદ્વીપ શહેર મેં હરિ નામ સંકીર્તન આરંભ કિયા. જબ પહેલે નિમાઈ હરિ નામ સંકીર્તન કર રહે થે શ્રીવાસ પંડિત કે ઘર મેં તો વો પ્રદર્શન કેવલ ઉનકે શુદ્ધ ભક્તો કો દિયા જા રહા થા. સબકો અંદર આને કી ઇજાજત નહીં થી કે ક્યોંકે મહાપ્રભુ ઉસ લીલા મેં અપને દિવ્ય લીલા પ્રકટ કર રહે થે તો સબકો અંદર આને કી ઇજાજત નહીં થી. જો ઉનકે પ્રિય કોન્ફિડેન્શિયલ ભક્ત થે ઉનકો આને કી ઇજાજત થી. બરા મહાપ્રભુ કર રહે થે કીર્તન કહાં નવદેવ કી સડકો મેં. વો કીર્તન મેં ઇતના જોશ થા કે લોગ ઘરો કો છોડ કર ભાગ રહે થે કીર્તન મેં ભાગ્ય લેને કે લિયે. ઘરો કો ખુલ્લા છોડ કર. અક્સર તો ઘર છોડતે તો તાલા માર કે નિકલતે હો. પર વો ઘરો કો ખુલ્લા છોડ કર ભાગ રહે થે કીર્તન મેં ઉપસ્થિત હોને કે લિયે. તો એક ચોર થા. ઉસ ચોર ને દેખા સબ ભાગ રહે હૈ હરિ નામ સંકીર્તન મેં ઉપસ્થિત હોને કે લિયે. ચોર ને કહા અબ તો અચ્છા મોકા હૈ. પહેલે તો સબ ઘર બંધ રખતે થે તો મુજે સોચના પડતા થા તાલા કૈસે તોડના. અબ તો સબ ઘર ખુલ્લા છોડ કર જા રહે કીર્તન આંદોલન મેં ઉપસ્થિત હોને કે લિયે. અબ મેં સબકે ઘરો કો ચુરા કર અમીર બન જાઉંગા. પર વો હરિ નામ ઉસને સુના દો મિનટ કે લિયે. દો મિનટ સુનને કા હરિ નામ કા એસા પ્રભાવ પડા કે જો ચોરી કી ભાવના થી વો તુરંત સમાપ્ત હો ગઈ. પહેલે વો સોચ રહા થા કે મેં સબકે ઘરો મેં જાકર ચોરી કરૂંગા. જબ વો હરિ નામ સંકીર્તન ઉસને સુના તો ઇતના આનંદ આયા કે જો ચોરી કા ભાવ થા વો છોડ દિયા. તો ફિર નિમાઈ પંડિત ને લાખો લોગો કી મોરચા લેકર વો આગે બઢે. કહાં જાને કે લિયે? ચંદ કાઝી કે મહેલ મેં પહોંચને કે લિયે. જબ ચંદ કાઝી ને દેખા કે લોટ આ રહે હૈ ઇતને બઢે મોરચા મેં મેરે સામને તો ચંદ કાઝી ઘબરા ગયા. છુપ ગયા દરવાજે કે પીછે. ફિર નિમાઈ વહાં પહોંચે અપને ભક્તો કે સાથ ઓર ચંદ કાઝી ને ઘબરાતે હુએ કહા તુમ્હારે નાનાજી નિલંબરા ચક્રવર્તી મેરે ગાંવ મેં મેરે અંકલ બનતે હૈ તો તુમ તો હો મેરે ભતીજે. તો કભી અંકલ કો ગુસ્સા હો તો ભતીજા ઠંડા કર દેતા હૈ ઓર ભતીજા કો ગુસ્સા હો તો અંકલ ઠંડા કર દેતા હૈ. ફિર દોનો કી જબ આગે ચર્ચા હોઈ ચેતને મહાપ્રભુજી ને કહા आप लोग गाय का मांस खाते हो, ये तो महापाप है। गाय के मांस के विषय में कहा गया है शास्त्रों में, जितने बाल होते हैं गांव में गाय में, उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, उतनी बार आप कत्ल हो गए एक छोटा टुकड़ा गाय के मांस का खाने का। और गाय में कम से कम 2 लाख बाल होते हैं, तो एक गाय के मांस का टुकड़ा खाने के लिए 2 लाख बार जन्म लोगे गाय के रूप में और आपकी खत्म होएगा वैसे तो। पर लोग इतने मूर्ख हैं, सोचते ही नहीं। तो महाप्रभु ने यह शिक्षा दी, फिर इसने चंकादि ने स्वीकार किया कि हमारे शास्त्र में कमी है। फिर महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपने पहले तो कीर्तन हमारा रोक दिया था, फिर आपने रोकना बंद कर दिया, क्यों, क्या कारण है? तो चंकादि ने कहा, जिस रात को मैंने यह संकीर्तन आंदोलन रोका था, उस रात को मैंने एक शेर का दर्शन लिया। उस शेर ने तेज नाखून को मेरी चाथी में लगाया और कहा, अगर तुम भविष्य में कभी भी संकीर्तन आंदोलन को रोकोगे तो मैं तुम्हारी छाती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उस शेर ने कहा, कभी तुम्हें संकीर्तन आंदोलन को मत रोकना। और आगे चंकादि ने कहा, मेरे जो सेवक है उन्होंने मुझे कहा कि जब भी वो जाते थे ये संकीर्तन आंदोलन को रोकने के लिए, आग आ जाती थी उनकी दाढ़ी के ऊपर। वो जाते थे, मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं ना, किस्म की तरह उन्होंने रोकने के लिए, और आग आ जाती थी उनकी दाढ़ी पर। तो ये सारे घबरा गए। फिर चंकादि ने उन्हें आदेश दिया, तुम लोग सबके तरह आंदोलन को मत रोको। तो फिर चंकादि से महाप्रभु ने एक वर मांगा। उन्हें कहा, यह वर दीजिए कि भविष्य में कभी भी तुम्हारे आगे की पीढ़ी ये संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगी। तो उन्होंने आरोप ये आदेश दिया, क्या, भविष्य में कभी भी संकीर्तन इस संकीर्तन आंदोलन पर आरोप नहीं लगाना। तो महाप्रभु जी की कई और लीलाएं हैं श्रीवास पंडित की, बाद में करेंगे। तो आज है चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि। हमने पहले एक भजन गाया था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करुणा मोरे। तो आप सब चैतन्य इस भजन में हम चैतन्य महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, क्या, आप कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए। आप जो हो सब अवतारों में सबसे दयालु हो, आपसे ज्यादा दयालु कोई अवतार नहीं हुआ है। और आप अवतारित हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु जी से ये प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा प्राप्त हो कि आप भक्ति में आगे बढ़ सको। सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, सब मुफ्त में या कीमत भर के? कीमत भरोगे मतलब माया को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कई बार लोग कहते हैं, महाराज हमें तो दोनों चाहिए, भक्ति भी चाहिए माया भी चाहिए। तो दोनों प्राप्त नहीं हो सकती, भक्ति चाहिए तो क्या छोड़ना पड़ेगा। तो आज महाप्रभु ये प्रार्थना कीजिए कि आप भगवान के शरणागत हो सको, दृढ़ होकर सेवा कर सको। चैतन्य महाप्रभु जी की, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि की, घोर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो अभी 11 बजे है सिद्धार्थ प्रभु का संन्यास, और आप लोग हो गए यहाँ 11 बजे, तो सब यहाँ ही आप लोग सब मंदिर में बैठकर कीर्तन करो आज, और शाम को आगे लेक्चर होगा। ओके, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। कृपया ध्यान दीजिए, शाम को फिर से गौर कथा होगा बाबा महाराज के द्वारा 4 बजे, सब लोग उपस्थित रहिए।
मेरे द्वारा पता नहीं हो,
श्री जलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।
3:30 बजे के अंदर आ जाइए सब लोग मंदिर के अंदर।